ये रेडियो नेपाल है। हिंदी समाचार में आपका स्वागत है और मैं हूं मुकेश कुमार मिश्र। आरंभ में मुख्य समाचार शीर्षक। राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी के समक्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पेश किया प्रतिवेदन। राष्ट्रपति ने कहा, द्वंद्व का घाव भरने में लगेगा समय। विकास निर्माण के काम में लापरवाही करने वाली निर्माण कंपनियों पर कार्रवाई की जाएगी। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री वसंत कुमार नेमवांग की प्रतिबद्धता। और भारत की दिल्ली में एक अनाज मंडी में आज सुबह हुई भीषण आगलगी में झुलसने से अब तक 45 लोगों की मौत। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने कहा कि द्वंद्व का घाव भरने में थोड़ा समय लगेगा। आज राष्ट्रपति भवन शीतल निवास में आयोजित समारोह में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के आर्थिक वर्ष 2075-76 का प्रतिवेदन लेते हुए राष्ट्रपति भंडारी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि संसद में दर्ज आयोग के संशोधन विधेयक के संबंध में आयोग को चाहिए कि सरकार को आवश्यक सुझाव दे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मानवाधिकार के सम्मान और संरक्षण की जिम्मेदारी सरकार की है। मौके पर आयोग के अध्यक्ष अनुपराज शर्मा ने देश में दंडहीनता की स्थिति को अभी भी बरकरार बताते हुए कहा कि आयोग द्वारा सिफारिश किए गए सभी विषयों का अब तक क्रियान्वयन नहीं हो सका है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि शांति प्रक्रिया के 13 साल पार कर चुकने के बावजूद द्वंद्व पीड़ितों को न्याय न मिल पाना बहुत दुखद है। इसी तरह राष्ट्रपति के समक्ष प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलिया ने प्रतिनिधि सभा सदस्य उपनिर्वाचन के परिणाम सहित का प्रतिवेदन पेश किया था। उप प्रधान एवं रक्षा मंत्री ईश्वर पोखरियाल ने कहा कि महिलाओं को लैंगिक हिंसा और विभेद से बचाने के लिए उन्हें आर्थिक रूप से सबल और सशक्त बनाना होगा। महिला हिंसा विरुद्ध 16 दिवसीय विश्व अभियान अंतर्गत आज काठमांडू के महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मंत्रालय द्वारा आयोजित प्रदेश नंबर 3 स्तरीय कार्यक्रम में उप प्रधानमंत्री पोखरियाल ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक लगात किसी भी तरह का विभेद जहां दिखता है वहीं पर ऐसा अभियान केंद्रित होना चाहिए। मौके पर एआईजी ठुले राय ने 91% बलात्कार की घटनाओं में जान पहचान वालों और रिश्तेदारों के ही शामिल होने का आंकड़ा प्रस्तुत करते हुए कहा कि लैंगिक हिंसा और अपराधजन्य गतिविधियों की रोकथाम के लिए संबद्ध निकायों के बीच सहकार्य जरूरी है। नेपाली कांग्रेस के सभापति शेरबहादुर देववा ने कहा कि देश की समृद्धि और विकास के लिए धार्मिक और पर्यटकीय क्षेत्रों का संरक्षण और संवर्धन किया जाना जरूरी है। आज बागलुंग के कुडुले फेदी में श्रीरंग वेंकटेश्वर मंदिर परिसर में शालिग्राम संग्रहालय का उद्घाटन करते हुए सभापति देववा ने कहा कि काली गंडकी और शालिग्राम धर्म की दृष्टि से ही नहीं बल्कि समग्र विकास के लिए महत्वपूर्ण है। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री वसंत कुमार नेमवांग ने कहा कि परियोजना का ठेका लेकर समय पर पूरा न करने वाले निर्माण कंपनियों पर कार्रवाई की जाएगी। आज रूपंदेही में निर्माणाधीन सड़कों और पुलों का मुआयना करने के बाद बुटवल में बुलाए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री नेमवांग ने कहा कि परियोजनाओं के काम में लापरवाही करने वाली और समय पर पूरा न करने के पीछे जिम्मेदार चाहे निर्माण कंपनी हो या अन्य कोई भी, सबको कार्रवाई के दायरे में लाया जाएगा। महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मंत्री पर्वत गुरुंग ने कहा कि समाज के अल्पसंख्यक और सीमांतकृत नागरिकों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए सरकार खास कार्यक्रम लाने जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के अवसर पर आज से काठमांडू में शुरू हुए मानवाधिकार राष्ट्रीय महासभा के उद्घाटन कार्यक्रम में मंत्री गुरुंग ने कहा कि नेपाल के संविधान द्वारा सुनिश्चित किए गए मौलिक अधिकारों तक नागरिकों की समान पहुंच बनाने के लिए सरकार द्वारा विशेष कार्यक्रम लाए जाएंगे। मौके पर मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष अनुपराज शर्मा ने कहा कि देश की संघीय संरचना के हिसाब से आयोग की संरचना और भूमिका परिवर्तन करने में सरकार की ओर से पर्याप्त सहयोग न मिलने के कारण आयोग की भूमिका कमजोर होती गई है और दंडहीनता भी बढ़ती जा रही है। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर व्यावसायिक विश्राम।
ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाई कस्तो चल्दैछ?
सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ला, तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटीसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारू गर्नका लागि *1415# डायल गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। कास्केड के पोखरा में आयोजित अंतर प्रदेश सभा के अनुभव आदान प्रदान कार्यक्रम पांच सूत्रीय निष्कर्ष के साथ आज संपन्न हुआ है। सातों प्रदेशों के सभामुख और उपसभामुख सहभागी कार्यक्रम से अंतर प्रदेश सभा बीच के परस्पर के अनुभव, साझा सवालों की पहचान और निरूपण के लिए एकता कायम करने और प्रदेश सभाओं के सभामुखों व उपसभामुखों के अनौपचारिक मंच निर्माण लगात निष्कर्ष निकाले गये। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग ने त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियंत्रण कार्यालय बलखू के लेखा शाखा में कार्यरत लेखा अधिकृत कमल प्रसाद दहाल समेत चार लोगों के खिलाफ विशेष अदालत में मुकदमा दर्ज किया है। लेखा अधिकृत दहाल ने त्रियुगा जनता बहुमुखी कॉलेज गायघाट के प्रशासन सहायक तेज नारायण चौधरी के जरिए परीक्षा की कॉपी अदला बदली कराकर कॉलेज की परीक्षार्थी जानुका आलेमगर और बरुआ कॉलेज गायघाट के हीरा कटवाल के साथ मिलकर प्राप्तांक में हेराफेरी की पुष्टि होने के बाद चारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। ये जानकारी अख्तियार ने दी। हिन्दू धर्मावलंबियों के धार्मिक ग्रंथ गीता के प्रादुर्भाव की याद में पाठ परायण एवं प्रवचन सहित विविध कार्यक्रमों के साथ आज गीता जयंती मनाई गई। वैदिक ज्ञान भावी पीढ़ी को हस्तांतरित करने के उद्देश्य से गीता जयंती के अवसर पर विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। 5127 वर्ष पहले मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी के दिन कौरव और पांडवों के बीच महाभारत युद्ध के समय विष्णु के आठवें अवतार के रूप में पृथ्वी पर अवतार लेकर कृष्ण ने अर्जुन के जरिए कुरुक्षेत्र में गीता के ज्ञान को पुनः जागरण करने कृष्ण के द्वारा अर्जुन के जरिए कुरुक्षेत्र में गीता के ज्ञान को पुनर्जागरण किए जाने का धार्मिक विश्वास है। लमजुंग में हुई बस दुर्घटना में एक महिला की मौत हो गई और अन्य चार लोग घायल हो गए। बेसी शहर से गोरखा की ओर जा रही बस सुंदर बाजार नगरपालिका 7 के पाउदी में दुर्घटनाग्रस्त हुई है। घायलों को इलाज के लिए पुराना मेडिकल कॉलेज भरतपुर ले जाया गया है। मृतक महिला की शिनाख्त अभी नहीं हो पाई है, ये जानकारी पुलिस ने दी। दूसरी तरफ पागलों की बरेंग गांवपालिका वार्ड नंबर 2 पोखरा चौर में पिकअप जीप दुर्घटना में 11 लोग घायल हो गए, उनमें से 3 की हालत गंभीर होने की जानकारी पुलिस ने दी। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारत में दिल्ली के फिल्मिस्तान इलाके में रानी झांसी रोड के पास अनाज मंडी में आज सुबह हुई भीषण आगलगी में झुलसने से अब तक 45 लोगों की मौत हो चुकी है। गंभीर रूप से झुलसे लोगों को दिल्ली के लेडी हार्डिंग, सफदरजंग और LMGP अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इस भीषण अग्निकांड मामले में सदर बाजार थाना पुलिस ने लापरवाही का मुकदमा दर्ज किया है। ये केस फैक्ट्री मालिक रिहान के खिलाफ दर्ज किया गया है। जांच केस क्राइम ब्रांच को सौंपी गई है। फैक्ट्री मालिक रिहान को पुलिस ने हिरासत में लिया है। इसके अलावा रिहान का पिता रहीम भी पुलिस के कब्जे में है। उधर दिल्ली सरकार ने घटना की मजिस्ट्रेट से जांच के आदेश दिए हैं। इस अग्निकांड में मारे गए मृतकों के परिजनों को दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार और दिल्ली भाजपा की तरफ से कुल 17-17 लाख मुआवजा दिया जाएगा, जबकि घायलों को 75-75 हजार आर्थिक मदद दी जाएगी। इन आर्थिक मदद में 10-10 लाख मुआवजा दिल्ली सरकार मृतकों के परिजनों को देगी, जबकि 5-5 लाख आर्थिक मदद दिल्ली भाजपा मृतकों के परिजनों को देगी। इसके अलावा 2-2 लाख आर्थिक मदद प्रधानमंत्री राहत कोष से दिया जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इस अग्निकांड में मारे गए बिहार के लोगों को मुआवजा देने का ऐलान किया है। घटना के प्रति मृतकों को प्रति मृतक 2 लाख का मुआवजा देने का ऐलान उन्होंने किया। हांगकांग के मध्य मुख्य कारोबारी इलाके की धरती पर आज काले रंग की चादर जैसी पिच गई थी, जिस सड़क पर लगभग हर सड़क पर काले कपड़े पहने लोकतंत्र समर्थकों का रेला वहां पहुंच रहा था। बच्चे, बूढ़े और जवान सभी के मुख से आजादी के लिए हांगकांग के साथ खड़े होकर नारा निकल रहा था। आंदोलन के 6 महीने पूरे होने पर आयोजित जनसभा में लाखों लोगों ने हिस्सा लिया। ये हाल के महीनों का सबसे बड़ा जमावड़ा था। पुलिस भी वक्त की नजाकत को समझ रही थी। संयम बरतने का ऐलान उसने पहले ही कर रखा था। इस दौरान हथियार लेकर आ रहे 11 लोग गिरफ्तार भी किए गए। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 19.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 4.4 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार शीर्षक एक बार फिर। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी के समक्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पेश किया प्रतिवेदन। राष्ट्रपति ने कहा, द्वंद का घाव भरने में लगेगा समय। विकास निर्माण के काम में लापरवाही करने वाले निर्माण कंपनियों पर कार्रवाई की जाएगी। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री वसंत कुमार ने मुआंग की प्रतिबद्धता। और भारत की दिल्ली में एक अनाज मंडी में आज सुबह हुई भीषण आगलगी में झुलसने से अब तक 45 लोगों की मौत। इसी के साथ हिंदी समाचार से मुझे अनुमति दीजिए। सुनते रहिए रेडियो नेपाल। नमस्कार। शुभरात्रि।